गौरचंद्राय राधिकायै सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्त्याभिहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्त्वास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे दैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे माहम् दिन हमने कहा था ना ये वेदांत के चार सूत्र याद करके आना बोलो तो चार सूत्र अथ अनंत शंकराचार्य का कहना ये कि ये जगत नश्वर है। शंख पतंजल योग इत्यादि ये पूर्ण नहीं है। इससे अत्यंतिक मुक्ति नहीं मिल सकती। अत्यंतक दुख निवृत्ति रे वो मुक्ति ये नहीं हो। जब तक कि ब्रह्म को नहीं जानेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः अनंतर मैंने क्या ये सब वेद उपनिषद शास्त्र इत्यादि पढ़ रखे हैं, न्याय इत्यादि पढ़ लिया तब मुक्ति की आवश्यकता समझ करके ये देखता है कि बिना उनकी जानकारी के बिना उनको तत्व से जाने ये अत्यंतक मुक्ति नहीं होगी। इसलिए जिज्ञासा उनको जानने से ही अपने आप अज्ञान दूर हो जाएगा और अत्यंत मुक्ति हो जाएगी। रामानुज इत्यादि ने कहा यह बात गलत है। संसार दुखपूर्ण है, नश्वर है, ये जब तक कि ब्रह्म को नहीं जानेगा तब तक इन दुखों से उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए नारायण तत्व ही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म को नारायण को जानने से इसलिए अथ अनंतर मैंने क्या सदाचार संपन्न वैष्णव की सेवा इत्यादि कुछ संगला संसार की दशा की उपलब्धि होना यह सब होने के पश्चात में तब ब्रह्म की जिज्ञासा। दूसरे दूसरे दार्शनिक भी कुछ कुछ कहते हैं, न्याय सांख्य पातंजल और ये जो पंच दर्शन है उनको अच्छे तरह से पढ़ने के बाद भी अथ अनंत पढ़ लेने के बाद उनका जगत जीव और ये सब के विषय में संशय रह जाता है। इसलिए ब्रह्म को जानने से ये सारे संशय दूर हो जाएगा। उनके चरणों में जब भक्ति होगी जानकर जो कौन है वो ब्रह्म, जिसकी भक्ति करने से दुखों से सदा के लिए छुटकारा भी हो जाएगा और उनके चरणों में शुद्धा भक्ति। इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा बहुत जरूरी है। हम लोगों के गौड़ीय वैष्णव ने विचार किया है, अथ मैंने संक्षेप में बतला रहा हूं, अथ अनंतर मैंने क्या जब जी को श्रद्धा उत्पन्न हो जाए हरि कथा में भगवान के श्री चरणों साधारण रूप में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, वो सभी इसके लिए अधिकारी है। ब्रह्म की जिज्ञासा की, उसको चित्त शुद्धि इत्यादि की कोई भी जरूरत नहीं है। अत्यंत निम्न स्थिति में कोई अजामिल जैसा व्यक्ति भी, दुराचार में फंसा वाला ये व्यक्ति, किंतु साधु संग में उसको यदि हो जाए तो वहीं से वो ब्रह्म जिज्ञासा करते कृष्ण कौन है। दूसरी बात, वो ये समझेगा अथ सारे उपनिषद वेद भी पढ़कर और षड् दर्शन भी पढ़कर देखता है कि वेदों के प्रतिपाद्य जो मुख्यतः उपनिषदों के जो प्रतिपाद्य निर्विशेष ब्रह्म हैं, उनको उनके गुणों का उसमें वर्णन नहीं किया गया है। तो उपनिषद जब ब्रह्म है उनसे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं। जब यह समझेगा, जब वह समझे कि नारायण इत्यादि भी तत्व हैं, ये यथार्थता में आनंद की ये अंतिम सत्ता नहीं है। नारायण क्या है? नारायण से ऊपर द्वारकाधीश भी पर तत्व की सीमा नहीं है। द्वारकाधीश मथुरेश भी चरम तत्व की सीमा नहीं है। यह उपलब्धि करेगा, उपलब्धि करने के बाद में तब वो देखेगा जैसे जीवों के लिए चरम उपास्य कौन है, इसके लिए व्यास जी ने इसको उठा करके कहा अथ अनंत अनंत, और इसके बाद में किस लिए ततः अथातो अतः 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 माने किस लिए, अतः माने साधु संग हुआ और उनके साधु संग में उसकी स्पृहा जी परतत्व की सीमा कौन है अथा तो ब्रह्म। तब ये जिज्ञासा होगी कि वो परतत्व की सीमा श्रीमद भागवत में उन्होंने ये सूत्र में बतलाया है, तो वो कौन है? रसपूर्ण सौ वही रस रसो वही स, ये कृष्ण ही परतत्व की सीमा है। इसको बतलाने के लिए उन्होंने ये बतलाया, ये गौड़ियों का विशेष तत्व परतत्व की सीमा आनंदमय पुरुष होना चाहिए, रसपूर्ण मनुष्य ये होना चाहिए परतत्व, इसलिए इस तत्व को पूछा ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए दूसरे श्लोक में जन्मादर्श जता में इसकी पूरी व्याख्या और लोगों की व्याख्या दी, मध्वाचार्य ने, रामानुज ने, निम्बार्क ने पारिजात भाष्य में, और सब लोगों ने, वल्लभाचार्य ने भी उसके ऊपर में लिखा, आनंद भिक्षु ने, विज्ञान भिक्षु ने, ये सब लोगों ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर में व्याख्या की। अंतिम में बलदेव विद्याभूषण ने की और जी गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ इत्यादि में संदर्भों में विशेष करके सब संपादिनी में उसके 550 सूत्रों में से करीब करीब 300 सूत्र उन्होंने लेकर के और इस चीज की व्याख्या की, विशेष करके इन चारों सूत्रों। तो इसलिए ठाकुर ब्रह्मा जी व्यास कल दूसरा श्लोक सूत्र पढ़ करके और विचार करके आए। अब भजन रहस्य, राधा नाम सुधा रसम रसयितुं जीवस्तु मे विह्वला पादौ तत्पदकांक्षिता सुचरतां बिन्दा कवि विधीषु तत्कर्म इव करः करोति हृदयं तस्या पदं ध्यायतं तद्भावोत्सवरतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। जीवा भौक्षु विह्वल राधा नाम गाने, राधा नाम सुधा रसम रसयितुं, ओ मेरी रसना राधा नाम की का जो सुधा है कीमत है, उसके रस को आस्वादन करने में लगो। मैं उसमें विफला विफल है विफल हो, बल्कि ये प्रार्थना कर रहे हैं, पादों और चरण वृंदावने चलो पद राधा अन्वेषणे। वृंदावन में कृष्ण अनुसंधान नहीं कहा, बतलाया राधा पद अन्वेषण के लिए वृंदावन में चलो, हे मेरे पैर राधा सेवा करो, कर हे कर तत्कर्माई व कर करो तू हृदय करो तू तत्कर्माई व मैंने उनकी सेवा के जो कार्य हैं उसको हे कर सब समय सुम संपादन करो। कैसा जैसे बतला रहे हैं हमारे गोस्वामी लोग, क्या हो वो हाँ हाँ ये बिंदारण्य महेश्वरी शकपति जस्तोषयंती प्रिया प्राण पेशी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका केलु भूमेशु रूप मंजरी मुखा तत्ताशी। ये ऐसे ही रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के, रघुनाथ दास गोस्वामी के सब कीर्तन के पद हैं या श्लोक सब हैं। उसमें विशेष करके उज्ज्वल मैंने उनके सेवा का निर्देश किया गया, इसलिए ऐसे सेवाओं को हमारा हाथ सब समय करे। राधा सेवा करो कर राधा स्मरम मने राधा भाव भावे मति भज राधा प्राण राधा भावे मति भज राधा भावे मति माने राधा के प्रति रूपमंजरी इत्यादि की जो सेवा की भावना है उसी रूप में तुम राधा जी की सेवा करो, वैसे तुम्हारे मति। ऐसा नहीं कि राधा जी का कृष्ण के प्रति जैसे प्रेम सेवा है वो नहीं, राधा भाव अथवा कृष्ण की जो सेवा करते हैं वो तो संभव पर नहीं है। इसलिए राधा जी की सखियां श्रीमती राधिका की जैसे सेवा करती हैं मन ऐसा ही चिंतन, ये भजन की परिपाटी है। तत्रैव राधा पद पाद में एकमात्र गति बतला रहे हैं, ये सब गोस्वामियों का उन्होंने ग्रहण किया, विशेष करके रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के विचारों को ले रहे हैं। देवी दुख कुल सागर उदरे दुयमानम अति दुर्गतम जनम तं कृपा प्रबल नौकाया अद्भुतम पाय स्वपद पंकजावयम। हे देवी, श्रीमती राधिका के लिए संबोधन कर रहे हैं, ये है विलाप पुष्पांजलि का श्लोक। विलाप पुष्पांजलि माने क्या? विलाप आर्तनाद करते हुए अपने विलाप को पुष्पांजलि बनाकर राधा जी के चरणों में समर्पण कर रहे हैं जिससे कि वो प्रसन्न हो। इसलिए हे देवी दुख कुल सागरो उदरे, विश्व ब्रह्मांड के जितने भी दुख हैं यहां तक कि दावाग्नि और प्रलयाग्नि कोटि कोटि मिलकर के भी राधा जी के विरह में जो दुख है उसकी तुलना नहीं कर सकते। और सुख जब उनका मिलन का सुख है उसको वैकुंठ इत्यादि सब सुखों का सार मिल करके भी करोड़ों गुण करने पर भी उस सुख से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए कोई भक्त जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कभी कभी उनका उनके मिलन की स्फूर्ति होती है, स्फूर्ति में देखते हैं वो राधा जी की सेवा कर रहे हैं, जैसा कुष्मा विलाप कुष्मांजलि में बदला। और कभी कभी स्फूर्ति के बंद हो जाने पर जैसे महाप्रभु को होता था, महाविरह में कातर हो जाते, तो उनका दुख क्या है? विरह का दुख है, संसारिक दुख नहीं कह रहे हम लोग, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अंततः भावावस्था आने पर कुछ कुछ कल्पना कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। हे देवी, मैं दुख विश्व ब्रह्मांड के जितने दुख हैं उन सबसे करोड़ों गुण करने पर भी सागर के समान जो दुख है उदरे उसके गर्भ में निमग्न दुयमानम अति दुर्गतम जन्म, दुर्गतम जन्म, दुर्गतम मां विरह में कातर होकर के बतला रहे हैं हमारी कोई सहायता करने वाला, मैं असहाय दीनहीन, सबसे संसार में कौन सा असहाय व्यक्ति है? कोई दुखी है तो उसके वो सबसे दुखी कौन है? संसार के दुखी वाले दुखी उतने नहीं है, बस संसार वाले सोचते हैं हमको कोई सहायता करने वाला नहीं है, प्रभु ऐसी करे जो हमारे दुख से हमको छुटकारा मिले, किंतु भक्त को ऐसा नहीं, भक्तों का केवल एक ही दुख है। कृष्ण का या श्रीमती जी का, यहाँ पर श्रीमती जी के लिए उनका दर्शन नहीं मिले और उस दुख को इतना अनुभव करते हैं ये विश्व ब्रह्मांड का जितना समुद्र है उससे भी अधिक वो अनुभव करते हैं, इसलिए छटपट करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी विरह में मूर्छित हो जाते हैं, रूप गोस्वामी मूर्छित हो जाते हैं, दुयमानम उसमें डूब रहा हूं ऐसे दो, और असहाय हूं, कोई भी मेरा सहायता करने वाला नहीं, साधु संग रूपी सहायता नहीं, गुरु की कृपा मैं नहीं प्राप्त कर सका, मैं बहुत दुर्गत निम्नगामी हूं, ऐसा समझ करके हे देवी तं कृपा प्रबल नौकया अद्भुतम, आपकी कृपा ही एकमात्र प्रबल अत्यंत मजबूत सुदृढ़ नौका है, और ऐसी अद्भुत नौका है नौका के स्मरण करने से ही नौका इसी पार में रही, और उसका आश्रय करने वाला व्यक्ति दुख के उस पार चला गया तब कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, श्रीमती राधिका जी का दर्शन हो जाएगा, ऐसी अद्भुत नौका है। जैसे के जाबी भाई भव सिंधु का नाम लेते ही, नाम की नौका, नाम का स्मरण करते ही नौका तो इसी पार में रह गई और जो साधक है उस पार चला गया, कब पार हो गया कैसे इसका पता नहीं चलता है, इसलिए आपकी कृपा अद्भुत है, कैसी अद्भुत है, प्रबल बड़ी सुदृढ़ नौका है। प्रापय आप कृपा करके उस नौका को दें, आप हमारे ऊपर में कृपा कीजिए, मैं योग्य हूं, इससे सब कुछ भी मैं योग्य नहीं, सर्वथा असहाय हूं, स्वपद पंकजादयम अपने चरणों की कृपा हमारे ऊपर। इसलिए भक्त प्रसाद कृपा और भगवत प्रसाद, कृष्ण और राधा जी की कृपा ये भगवत प्रसाद है और भक्तों की कृपा भक्त प्रसाद है, साधन से नहीं होगा, लाख साधन करें वो नहीं होगा, आपके साधन के परिश्रम से यदि उनको कृपा हो जाए तो ये संभव है। रघुनाथ दास जी करें उद्भट आरती है इसमें नहीं, आगे आएगा उद्भट आरती, उद्भट आरती किसको कहते हैं? हम लोगों को कोई मारे पीटे और कोई सहायता करने वाला न हो और पीटता हुआ चला जा रहा है और उस समय कैसी आरती होगी, कैसी आरती? आपको काटने के लिए तैयार है, 10-5 आदमी ने पकड़ लिया, तस से मस नहीं करते और चारों तरफ से बंदूक तान दिया और शूट करने जा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि अब मैं मरा, उस समय में उद्भट आरती हो सकती है, किंतु भक्तों की आरती और भी अधिक, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए उनकी आरती कैसी है, अत्यंत उद्भट आरती है, किस लिए, जिसको देख करके उनका चित्त द्रवित हो जाए और वो कृपा करे, इसलिए जितने भी साधन हैं सब उनकी कृपा के प्राप्ति के लिए ये सब साधन है, साधन वो है। ऐसा नहीं कि साधन करके उनको पा जाएंगे हम, ये संभव बात नहीं। काली ने कौन सी कठोर साधन की जिसके चरण कमल को ब्रह्मा शंकर और सब ऋषि महर्षि लोग, बड़े बड़े लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं और वो नहीं आता, और साक्षात उन चरणों से साक्षात रूप में काली के पैर को सिर पर दे करके और नृत्य कर रहे हैं, आनंद से मग्न होकर के अपने परिजनों को देखते हुए और नृत्य कर रहे हैं तरह तरह से भंगिमाओं के साथ। ये काली का काली कौन सी महत्ता थी, कौन सा साधन उसने किया जिनके सी अंगों का ध्यान जितने ऋषि महर्षि सब लोग नहीं कर सकते, नहीं होता है वो, है ना, गोपियों की उक्ति, आहुष्टते ननिलनाभ पदार बिंद जोगेश्वरैरपि विजिगन्त अगाध बोधै संसार कुपतितो तरणाम नामलम। इस श्लोक में देखो बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोगों के लिए वो चिंतन और नहीं आते ध्यान में, कौन सा साधन अगासुर ने किया, ये केवल चरण कमल ही नहीं, चरण कमल इत्यादि के साथ में सुंदर मुस्कुराते हुए कृष्ण बंसी लेकर के और सब सखाओं और गाय और बछड़ों के सहित सखाओं के साथ में उसके पेट में अंदर में चले गए। इसकी के बाकी देखो, ये सब अहत की कृपा है, क्यों हुआ ये केवल मात्र पूतना को देकर, माता के काबेश बनाकर वात्सल्य से कृष्ण को गोदी में लिया मारने के लिए, किंतु पुचकार रही थी केवल ईश मात्र से, क्या पुतना के भाव से उसको ऐसी परम गति मिलेगी जो कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश कर गए। ये सब अहत की कृपा है, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोध नक्र मकर आदि कौली कृतस्य दुर्वासना निगड़ितस्य निराश्रयस्य चैतन्य मम देहि पदावन। ऐसे प्रार्थना किया जाए भजन के समय, तब तो ये भजन करने के तरीके हैं, नाम करने के तरीके हैं, चिंतन करने का ये तरीका है, इस नियम के साथ में भजन किया जाए। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मार रहे थे कोड़े से, चमड़ा निकल गया, रक्त निकल गया, धज्जिया उड़ गई, मांस भी निकल गया, केवल हाड़ बच गया, हाड़ भी तोड़ दिया होगा, आह ऊह कभी किया, और हम लोग, और उसको कह रहे हैं ये तुम्हारा कल्याण हो भगवान प्रभो, तो इसका कल्याण करना, और हम लोग कहां देखो, कहां सहिष्णुता, कहां धैर्य, भगवान पर विश्वास, ये तो संसारिक बात है, उससे भी लाखों गुना दुख है भगवान का विरह और राधिका जी का विरह और भी अधिक, यदि कृष्ण को कृष्ण के लिए किसी का विरह हो उसे लाखों गुना विरह होना चाहिए राधा जी के विरह में, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो। इसलिए स्तावावली में पुनः वो रघुनाथ दास को शामिल करें, इसलिए बतला रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, हरि नाम की माला ले लिया, गभीर रात में सो करके उठे और उस दर के माला कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं और ये सब पदावलियों को श्लोकों की आपत्ति कर रहे हैं, और उसका जो बंगला में अथवा उसके लिए पदावली अलग से कर, वही शरणागति कल्याण कल्पतरु, और उसके बाद में विशेष चाटू पुष्पांजलि इत्यादि का पद्यों में उन्हें पढ़ा है वो और अधिक, ये सब भजन के तरीके हैं उन्होंने दिखे। पादाब्जोस्तो बिना वरदास्यमेव नन्नत कदापि समये किल देवी चाची, इसकी व्याख्या में जो ऊपर में बतलाया ना, देवी दुर्कुल सागरो दरे द्विमान मति दुर्गतम जनम पंकृपा प्रबल नौकया अद्भुतम प्रापय पद पंकजाल। क्यों इतने दुखी हो गए कर रहे हैं? है तो उनकी कुछ स्मरण करते 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 अष्टकालीय लीला में से उन्होंने स्मरण किया, उनको स्फूर्ति जगी, राधा और कृष्ण परस्पर मिले हुए। उस समय में कृष्णचंद्र जी राधिका जी को अलता पहना रहे हैं और उनकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो जाती है भावों के उद्गम से। राधा जी कहते हैं इनको, किनको? रति मंजरी कहते हैं। अरे रति या रूप, इसके द्वारा नहीं होगा, ये क्या कर सकता है, ये कुछ जानता नहीं है, अभी नया है, इसलिए तुम कर दो। तो इनको कहा जे भाई दो, वो तुली हमारे हाथ में। कृष्ण दे नहीं रहे, उन्होंने धक्का दे दिया कृष्ण को, धक्का दे दिया। उस समय में धक्का दे करके जो ही वो अपने हाथ में तुली लेकर रति मंजरी, रति मंजरी मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी भाव चिंता, उस समय जो ही हाथ बढ़ा करके उनके चरणों में लगाने जाते हैं, इतने में वो भाव खत्म, स्फूर्ति खत्म हो जाती है। देखते हैं कि हाथ में कुछ नहीं है, न राधा जी है, न कृष्ण है, न कोई गोपी है, न गोप है, कुछ बस पछाड़ खा करके गिर जाते हैं और रोने लगते हैं, हाय हाय हमारा ऐसा दुर्भाग्य। तब ये फिर रो करके ये कहते हैं देवी दुख कुल सागर हो जाए, कब आप कृपा करेंगी? पादाब्ज, इसीलिए पादाब्ज, पादाब्ज का जाम लीला से संबंधित है। पादाब्ज योस तव बिना परदास्यमेव नन्यत् कदापि समीहे देवी जाय सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु। इन्होंने सब जगह पहले ये सब भूमिका बांध रहे हैं और इसके बाद में सवेरे से सवेरे तक की सारी लीलाओं का वर्णन करते हुए प्रार्थना की है कि आपकी लीला में कैसे प्रवेश करके आपकी सेवा कर सकते सवेरे से। तो उसमें अभी भूमिका में ये बतला रहे हैं, हे देवी यदि आप प्रसन्न हैं तो पादाब्जयोस्तव बिना वरदास्यम, आप समस्त वरदात्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वरदान देने में समर्थ हैं, दे सकते हैं, किंतु मैं साधारण कोई वर नहीं चाहता, आपके श्री चरणों की सेवा के बिना और कोई भी दास कोई भी वर मैं नहीं चाहती। नन्नत कदापि समय किले दिए भी चाहती, किसी समय में और कोई दूसरा वर नहीं चाहती। सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम, आप यदि कहती हैं प्रसन्न हमारी सखी बन जा और हमारी तरफ में कृष्ण की सेवा करो, कभी हमें जरूरत नहीं इसकी, इसके लिए हमको नमस्कार है दूर, इस पद के लिए बहुत ऊंचा पद हम नहीं चाहती, हमारे लिए संभव पद नहीं है। दास्यायते तुम्हारा जीव दास्य है, आपकी जो सेवा है मम रसोस्तु उसी में हम आनंद है, रसोस्तु सत्यम मैं इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहता। दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, आपके सभी सखी पद के लिए हमारा नमस्कार है, मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहता हूँ कि आपके चरणों की सेवा मैं जन्म जन्मांतर तक कर सकूं। श्रील रूप गोस्वामी जी तत्रैव तत्रैव मैंने यहाँ पर सब गोस्वामियों के लिए सब तत्रैव तत्रैव कर रहे हैं भाव के लिए, ये सब एक ही जगह का नहीं है, स्तवावली का नहीं, ये स्तवमाला, स्तवमाला रूप गोस्वामी जी का, स्तवावली है रघुनाथ दास गोस्वामी का। हा देवी काकू भर गदगद याद मिला, काकू भर वही आर्तनाद के साथ में ये भी रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। हा देवी काकू भर गदगद याद बाचा जाचे निपत्त भूमि दंडवत उद्घटा दे, मैं पृथ्वी पर गिर कर साष्टांग प्रणाम करते हुए उद्भट आरती के साथ में हृदय जला जा रहा हो, शरीर जल रहा हो, दुख को सहने में असमर्थ है। अस्य प्रसादमुद्भस्त जनस्य, मैं बहुत ही मूर्ख हूं, मैं नहीं जानता जी आपके कैसे सेवा होती है, मैं मूर्ख हूं सब प्रकार से, विषयों में भी पड़ा हुआ हूं, हो सकता है कह रहे हो। तब आपका जनस्य, जनस्य माने क्या, साधारण जन के लिए, मैं आप ही का जन हूं, आपका ही सेवक हूं, जैसा हूं मूर्ख हूं चाहे असहाय, जैसा हूं आपका हूं। अस्य ईश जनस्य कृत्वा, आप कृपा करके गांधर्वी के, हे गांधर्वी के परम सुंदरी रूप से, संगीत से, सेवाओं से, सब प्रकार से आप गंधर्वा के समान हैं। तब गणी गणनांग विधि, आपके गणों में जो सेवा करने वाली हैं उनमें मेरा भी नाम एक लिख लीजिए, मैं आपकी सेविका बनना चाहती हूं। भूमे दंडवत पड़ी बहु आरती स्वरे, काकु भरे गदगद वचन जोड़ जोड़ करे, प्रार्थना करी गो देवी ए अबुध जने, तब गणे गणी कृपा करो अकिंचन, मैं अकिंचन हूं, मेरे ऊपर में आप कृपा की। तत्रैव, अब तत्रैव माने यहां पर क्या होगा, राधा रस सुधा निधि, उसमें बतलाया गया कृष्ण मनमोहिनी राधा दास्य रति प्रार्थना, राधा जी की कृपा के लिए ये प्रार्थना कर रहे। वेणु करान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज सूनु, जस्या कटाक्ष सरखात विमुच्छितस्य तं राधिका परिचरामि कदारसे। वेणु करान निपतितम जस्या कटाक्ष सरखात विमुच्छितस्य, जस्या कटाक्ष सरखा, जिनके कटाक्षों से श्री कृष्ण के हाथों से वेणु गिर जाती है, जिस वेणु को स्वप्न में भी नहीं छोड़ते, दिन रात अपने हाथों में बगल में कपड़ों में लेकर के सोते भी हैं तो वैसे, किंतु यहां पर गिर जाती है। खलितम शिखंडम, उनका मोर पंख का मुकुट भी गिर जाता है। भ्रष्टंच पीत वसनम, उनके वसन भी स्खलित हो जाते हैं, ऐसे जो ब्रजराज तांगरा आसक्ति हो गई है, आसक्ति के परिपक्व होने पर ऐसे स्वभाव। हम लोगों की स्थिति अभी कहां भी श्रद्धा ही हुई कि नहीं, अनर्थ ही निवृत्ति नहीं हुए, केवल अभी जान लो जी हमारा उद्देश्य क्या है भजन का, तब फिर धीरे 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 आगे हम बढ़ेंगे। राधा दास रतिर व्यवहार परिचय यथा भागवत तयोपयुक्त स्रग गंधवासु अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासवास्तव मायाम जय वही। ये कौन कह रहा है, एकादश स्कंद में नहीं, ग्यारह स्कंद में है छठ, ये कौन कह रहा है, उद्धव तयोपयुक्त भू होना चाहिए मोह, तयोपयुक्त कृष्ण को उद्धव जी शायद कह रहे हैं। तयोपयुक्त स्रग, स्रग माने माला, आपके पहनाए हुए आपके व्यवहारित जो माला है, गंध उनको निवेदित जो गंध है, बासो बास वसन, अलंकार चर्चिता अलंकार, और चर्चिता मैंने यस उच्छिष्ट भोजिनो आपका उच्छिष्ट भोजन करने वाला, दासास्तव आपका दास मायांग्य, मैं इन चीजों के द्वारा माया को सही में जय कर लेता हूं। भगवान की यदि कृपा पाना है तो तो इन चीजों हमारे लिए तो साक्षात उपलब्ध नहीं है, किंतु उद्धव के लिए था। उद्धव तो मथुरा से वृंदावन जाने के समय में उनको अपने हाथों से ही अपनी माला बास अलंकार इत्यादि सब प्रदान किया था। हमारे लिए अर्चन में अभी जो साधारण व्यक्ति है अर्चन इत्यादि करके उनका वसन गंध माला, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई माला पहन आता है ठाकुर जी का अर्पित तो लड़ाई युद्ध हो जाती है। वो ऐसे कदर नहीं पहनेंगे और वो कहता है वो समझता है ये ठाकुर जी का माला पहनने से इनका कल्याण हो जाएगा और वो आदमी विवाद करने नहीं पहना, मत ऐसा मत करो कभी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी की माला ये दे रहा और हमें मिल गया, ये समझो जो प्रभु की अत्यंत कृपा है। चैतन्य महाप्रभु जाए गए उनके दर्शन करने के लिए, जा रहे हैं दक्षिण में, आदेश मांगने के लिए गए जगन्नाथ जी का कृष्ण का, और देखते ही दर्शन कर रहे इतने में माला उनकी न जाने कैसे गिर गई और पुजारी लेकर के उनको अर्पण किया। महाप्रभु जी के आज जगन्नाथ जी के आदेश मिला, हमारी यात्रा सफल हुई। हम लोगों ने नवदीप में भी देखा, हम लोगों के गुरु जी का प्रकट अवस्था इस समय में जिस समय हरे कृष्ण करके जबकि उनका तिरुभाव हो रहा था, पुजारी बोला जी उनके माला गले की, हम लोग सभी लोगों बड़े हताश होकर के रोने लगे। सोचा जब प्रभु की कृपा हो गई अब इनको लेकर के जाएंगे, ये मालाओं को या उनका वस्त्र हो अर्पित तुलसी हो अलंकार इत्यादि हो उच्छिष्ट हो तो पाने पर अपने को कृतार्थ समझो। किंतु ये भी है, कुछ थोड़ा सा विचार भी है, साधारण लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह और उसमें पुजारी इत्यादि अनर्थ से भरे हुए हों तो उनके द्वारा अर्पित प्रसाद का एक विचार है, और स्वयं प्रकृति जो विग्रह हैं जैसे गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, जगन्नाथ जी इत्यादि जो हैं उनमें कभी दुराचारी होने पर भी कभी कभी देखा जाता है, उस प्रसाद का महात्मा का एक वैशिष्ट है। और कोई भी भक्त शुद्ध भक्त है और वो कोई ठाकुर जी भी नहीं है और वो प्रसाद पाता है तो उसमें क्या समझना चाहिए, बिना अर्पित हुए तो प्रसाद पा नहीं सकते। इसलिए प्रसाद उन्होंने कृष्ण को अर्पण करके पा रहे हैं। इससे भी बहुत बड़ा महात्मा वो है, महत्व उस बात का है यदि उत्तम अधिकारी हो, निवेदन किया हो और न किया हो, उन्होंने अपने को निवेदन कर रखा है और उत्तम महाभागवत हैं। यदि मान लिया कि मधुमंगल ने कृष्ण को कोई चीज अर्पित नहीं किया और खा रहा है, वो प्रसाद होगी कि नहीं, कृष्ण को तो दिया नहीं, अरे उनका ये सब कुछ समर्पित है, इसलिए ये विचार मत करो जे ये अर्पित है या नहीं है। इसलिए महाभागवतों का विचार कुछ अलग होता है निराला। एक बार हमारे गुरुजी और नरहरि प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, ये दोनों बंसीदास बाबा जी का दर्शन करने के लिए गए। तो उस समय में जब पहुंचे तो देखा जैसे सैकड़ों भक्त लोग बैठे हुए हैं और वो तंबाकू लेकर के गुड़गुड़ी वाला हंका पर चढ़ा करके उसको तैयार कर रहे थे और कह रहे जे अरे कृष्ण ने इसको भोग लगा दिया है, गौरनिताई तुम भी ये थोड़ा सा चख लो, इसके बाद में मैं चखूंगा। गौले नहीं, और थोड़ी देर के बाद में न जाने क्या सोच करके, वो क्या एक था जिसका कॉफी, कॉफी कॉफी या चाय, मैंने कॉफी मैंने चाय, उसमें तो चाय कोई सेवक ले आया तो उन्होंने कहा अरे गौर नेताई को कहा देख लो कृषि भोग तो लगा दो, लगा करके थोड़ा सा छुआ करके और बोले सबको दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब हाथों में लेकर के उसे पान कर रहे। तो नरहरि प्रभु को उसमें से किसी भक्त ने दिया तो उन्होंने हाथ में ले लिया और गुरु जी के तरफ में देखने लगे। गुरु जी को दिया तो उन्होंने नहीं लिया, आज जब इनको दिया तो ये सोच रहे हैं जैसे ये तो महापुरुष का प्रसाद है तो ये लेने में दोष क्या है, तो सोच रहे हैं ऐसे लेकर के भी बंद कर रहे हैं। या कीर्तन धर तो नरेंद्र पर प्रभु बार बार देख रहे हैं, तो गुरु जी जब नहीं लिया तब समझ गए तो उन्होंने फेंक दिया। ये भी प्रसाद का विचार ठीक रखना है, जो कि कृष्ण को नहीं निवेदन किया जाता है और कोई महापुरुष हो। गुरु जी ने कहा नरहरि प्रभु को अरे शंकर तो विष खा सकते हैं, हजम कर सकता है, तो शंकर का विष प्रसाद तुम लेगा कि नहीं लेगा? शंकर जी ने प्रसाद को विष को थोड़ा सा स्पर्श करके पी लिया थोड़ा, और वो प्रसाद सबको दे रहे हैं, तो कोई लेगा कि नहीं? आग उन्होंने खा लिया और आग का प्रसाद दे रहे हैं, लो खा लो, तो कोई खाएगा? तो ये जरा समझ बुझ करके इस समय प्रसाद में भी विचार है, ऐसा नहीं हमको जो रुचकर है उसको तो ले लिया और जो रुचकर नहीं है ऐसा नहीं, विचार करके सब। इसलिए महाभागवत या मध्यम अधिकारी यदि शुद्ध रूप से उसको निवेदन करता है ठाकुर जी को शिविर, तो वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ माने जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है और वो ठाकुर जी को अर्पित करते हैं और कुछ सदाचारी नहीं है, पान बीड़ी सिगरेट बीड़ी खाते हैं, तो उनके हाथ का प्रसाद नहीं। किंतु जहां नित्य स्वयं प्रकटित हैं वहां पर ये चीज ये ना दे करके, मान लिया कि तुम चातुर्मास में गया कार्तिक के महीने में जगन्नाथपुरी, वहां पर किसी ने आपको प्रसाद दिया, भाई प्रसाद कुछ ले आओ, उसमें बैंगन इत्यादि भी, परवल है बैंगन है, क्या करें क्या करें? यदि अजाचित भाव से प्रसाद पा रहे हैं और उस समय दे दिया तो क्या करो? उस समय ऐसा मत करो जो नहीं लेंगे मरेगा, किंतु देख रहा है जैसे वो सब है और पत्ते में नहीं दिया है तो उसमें ये कह सकता है जी हम लोगों का चातुर्मास उसको बात देकर के और सब। और उत्तम भागवत ये सब विचार नहीं करेंगे, उनकी बराबरी हमको नहीं करना, ये सब विचार करना चाहिए, ये सब विचार करके प्रसाद के तो जैसा जैसा अधिकार है उसके अनुसार में इन चीजों को समझना चाहिए। यदि उत्तम वैष्णव है तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, प्रसाद पा लिया ऐसे ही, उनकी समर्पित आत्मा है, इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेन वलक्षण, उन्होंने अपने को समर्पित किया इसलिए उनका सभी कुछ कृष्ण को समर्पित है, उन्हें विचार नहीं करना। कभी कभी गुरुदेव किसी शिष्य का दिया हुआ साक्षात रूप में ग्रहण नहीं करते, क्यों? जानते हैं ये अनर्थों से भरा पड़ा है और किसी शिष्य से मांग करके ले लेते हैं जबरदस्त, ये सब उनके ऊपर, तुम उस पर अधिक विचार मत करो। इसलिए इस पर सब अच्छी तरह से विचार किया जाए। राधा अपराह्न लीला, यह है अपराह्न, अभी जो बतलाया जीवों के आसक्ति जो है ये अपराह्न भाव है भक्ति का, इसमें अपने अधिकार के अनुसार में ऐसी राधा जी के दास्य की अभिलाषा लालसा जगेगी। और उसी संसार में हरि नाम करते हुए भ्रम करे, उन्हीं श्लोकों को उन्हीं भाव को लेकर के। जैसे कबे गौड़ बने सुर धुनि चटे, हा राधे हा कृष्ण बोले, ऐसी प्रार्थना करके हरि नाम करो। और कभी कभी प्रार्थना करो क्या कहे ना जी, हमारे समान दुर्जन कामी ना ना बंगला में, हाँ हमारा जीवन और सदा, इसको साधारण आदमी करे, तुम लोग इसको करो, हमारा जीवन और सदा पापे नाई का पुण्य रलेश परे रो उद्वेग दिया छी। दूसरों को उद्वेग देने में हमको आनंद होता है और दूसरों का सुख देख करके हमको बड़ी जलन और ईर्ष्या होती है। हे प्रभु हमारे ऊपर में कृपा है। और कहते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे करो, रो उसके साथ। और जब उन्नत दशा होगी तो ऐसे ऐसे कबे गौड़ बने सुर धनु चटे, हरा थे गुरु जी से कभी कभी उसी हरिनाम करते हुए ये बोलो, हमारा रोग देह रोग को अब दूर होगा। क्या है वो देह रोग दूर रवे, संसार फुकार काने ना पसीबे, देह रोग दूर होवे। संसार फुकार माने क्या, संसारिक जो आदमी दुख में जर्जरित होकर के रो रहा है, हमारे पति ने हमको छोड़ दिया और हमारे हमारे बच्चे को ले लिया और तड़प तड़प करके वो मर रही है, तो तुम सुन करके तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाएगा उसके दुख में, द्रवित हो करके अच्छा तब क्या करूं मैं, चलो तुम्हारा पालन पोषण मैं करूंगा, बस हो गया भजन। इसलिए संसार फुकार काने न पसीबे, ऐसी सब बातें कान में न पसे, और देह रोग ऐसी प्रार्थना करते हुए, नहीं तो यदि ऐसी सुनेगा तो कहेगा जी देखो तुमको मैंने धर्म की माता बना लिया अपना, या धर्म की बहन मैंने बना ली, और बस हो गया भजन सृष्टि। इसलिए हम लोग अनुभव करके देख रहे हैं कितने लोगों को ऐसा, इसलिए अपने योग्यता के अधिकार में भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम ठाकुर इत्यादि के कीर्तन के पद गोस्वामियों के पद को अनुशीलन करते हुए हरि नाम करो, उन्हीं का चिंतन सब समय करते हुए, इसमें बात के समय में कोई मत छुओ। राधा प्राप्त गए हैं अब अपराह्न के लिए लिया क्या है। श्रीमती राधिका जी दोपहर में कृष्ण मिलन के बाद में सूर्य पूजा इत्यादि के चल से कृष्ण से मिलन के बाद में अपने घर में लौट गई जावट में। निज रमण कृते क्लिप्त नानोपहार, अपने प्रियतम के लिए तरह तरह का व्यंजन बनाया, मिठाई बनाया, लड्डू बनाए, क्या क्या सब बनाया और उसको नंदगांव में भेजा। सुस्नाता स्नान किया, सबसे उन्हें स्नान किया, रम्य वेशा अत्यंत रमणीय वेश उनको धारण कराया। प्रियमुख कमल, प्रियमुख कमला आलोक पूर्ण प्रमोदान और अत्यंत सुंदर उनके श्रृंगार हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने की जितने श्रृंगार की इत्यादि साफ उनमें परिपूर्ण है, ऐसा सुंदर है प्रमोदान। उनका चिंतन करे उस लीला का, और कृष्ण के लिए चापरान्ने अपराह्न में अपनी गायों को लेकर वन से लौट रहे हैं, काली धमली इत्यादि को अपने बंसी में टेते हुए कदम्ब टेर पर, और सबको एकत्र करके वहां से ब्रज अनुचलितम ब्रज में धीरे 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 चल रहे हैं। कभी जहां पो सरोवर मिल गया, जमुना मिल गई, तो उनको पानी पिलाते हैं, कैसे कहते हैं पानी मेरी मेरी, पानी पियो, चूचू चूचू माने अब पानी, जब पी लिया तो तीरी तीरी तीर में आ जाओ, इस तरह से करते हुए बंसी के सहारे से सबको एक साथ में पानी पिलाते हुए सब इन लीलाओं का चिंतन करते हुए धेनु वृंदई वयस्य अपने धेनुओं के साथ में और वयस्य मित्रों के साथ में वहां से लौट रहे हैं राधा लोक तृप्तम, और रास्ते में श्रीमती राधिका जी को दर्शन किए करके तृप्त हो जाते हैं। पितृमुख पितृमुखम मिलितम मातृ मिष्टम स्मरण, पिताजी उनसे मिलते हैं, मैया उनकी आरती उतारती है और उनसे मिलती हैं और उस समय का दृश्य स्मरण करती हैं, उसको मैं स्मरण कर रहा हूँ। राधिका गृह गेला कृष्ण लागी विरचिला नाना खाद्य उपहार स्नातरम में वेश धरी प्रिय मुख क्षण करी पूर्णानंद पाई लपार। श्री कृष्ण अपराह्न काले धेनु मित्र लैया चले पथे राधा मुख ने रेखलिया नंद आदि मिलन करी जसोदा माँ जत हरी स्मर मन आनंदित। इस प्रकार से हरिनाम करते हुए भजन करने से चित्त स्थिर होकर के विषयों से उपरत हो जाएगा। यह सेवा अर्चन आदि से करोड़ों गुण श्रेष्ठ है, साधारण आदमी इसको नहीं कर सकता है। ये कौन कर सकता है जो अभी पंचम सोपान पर पहुंच करके आया है। श्रद्धा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति में पहुंचा, ऐसा व्यक्ति ये सबको कर सकता है। साधारण जो अपने जैसे अधिकार में है उस तरह से अपना भजन प्रशस्त करके चले। गौ प्रमाण।